हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? क्यों इतने दिनों से हमारे पीछे पड़े हुए हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो कभी तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी तुम क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों मेरे इतने लोगों को तुमने मार दिया और अभी इन बचे हुए लोगों की भी जान लेने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ दो इन लोगों को। राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने विक्रांत का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उससे ये सारे सवाल किए, और राजा की बात सुनते ही विक्रांत ने अपने हाथों को खोला छोड़ा, और उसके ऐसा करते ही वो सारे लोग वापस जमीन में गिर गए। उनमें से एक दो लोग बेहोश भी हो गए थे, लेकिन बाकी लोग तुरंत ही उठकर खड़े हुए और पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन वहां पर कहीं से भी बचकर निकल जाने की जगह नहीं थी। हमारे रास्ते में तो तुम कभी आ भी नहीं सकते हो, इसलिए इतने बड़े सपने तो देखना ही छोड़ दो, और हमने भी तो तुम्हें आज तक जिंदा छोड़ा है, इसके लिए हमारा एहसान मानो तुम। इतना बोलते हुए उसने राजा की तरफ देखकर अपना एक हाथ उठाया, उसके हाथ से लाल रोशनी निकली और फिर सामने खड़े राजा के हाथ पैर जंजीर से पीछे की तरफ होकर बंध गए, और वहां खड़े बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उन सारे लोगों को एक साथ बांधकर उसने उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे कि उन सभी के बदन पूरी तरह से अकड़ने लगे और उन लोगों को बहुत तेज दर्द हुआ। वो लोग दर्द से चिल्लाए, लेकिन विक्रांत के कानों को उनकी वो दर्द भरी चीखें जैसे सुकून दे रही थी, और उन लोगों के इस तरह से चीखने पर वो बहुत ही तेज आवाज में हंसा और महल के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि महात्मा गुरुजी का बनाया हुआ वो रक्षा कवच जो अब तक महल के चारों तरफ बना हुआ था, शैतानी हमले से अब वो टूट चुका था, और विक्रांत भी अच्छी तरह से जानता था कि उसे रोकने वाला अभी यहां पर कोई भी नहीं है, और वो आसानी से वसुंधरा को वहां से लेकर जा सकता है। राजा ने उसे अंदर जाते देखा तो फिर से तेज आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ, क्या चाहते हो तुम? विक्रांत शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमसे मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं। नहीं, तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। उसकी बात का मतलब समझते ही राजा फिर से तेज आवाज में अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया। राजा की बात सुनकर विक्रांत फिर से दरवाजे पर ही रुक गया, और वो फिर से पीछे मुड़कर देखते हुए कुछ कदम चलकर राजा की तरफ आया, और उसने मुस्कुराते हुए राजा की बात का जवाब देकर कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं विक्रांत हूं, और तुम मुझे कभी रोक नहीं सकते महेंद्र प्रताप, और इस दिन का तो मैंने इतने सालों से इंतजार किया है, और आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं, इसलिए मैं वो करके रहूंगा, और मैं वसुंधरा को यहां से ले जाकर रहूंगा, तुम बस देखते रह जाओगे। इतना बोलकर फिर से वो एक तेज शैतानी हंसी हंसा और वहां से अंदर की तरफ चला गया। राजा पीछे से चिल्लाता रह गया, लेकिन उसके हाथ पैर और शरीर सब कुछ उसकी शक्तियों से बंधा हुआ था, और राजा कुछ भी नहीं कर पाया, यहां तक वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। थोड़ी दूर पर खड़े सारे लोग, राजकुमारी का भाई और बाकी के सैनिक भी उसी तरह से बंधे हुए हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा तो मल गए हैं या फिर बहुत ही बुरी हालत में घायल होकर बेहोश पड़े हैं, और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी पर हमला हुआ है और सभी को कहीं ना कहीं चोट लगी है, और वो सब एक दूसरे से काफी दूर बंधे हुए हैं। सिर्फ उन सब की आवाज शायद एक दूसरे तक पहुंच रही है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद भी उन काली शक्तियों में बुरी तरह से फंस गए हैं। पांचवाए नदी के दूसरे किनारे पर रक्षक दल के सारे सदस्य मदद के लिए इस तरफ आ रहे हैं। उन लोगों ने रास्ते में लोगों को बुरी हालत में तड़पते हुए देखा, और उनमें से जिनके पास भी जख्मों को ठीक करने की उपचारात्मक शक्ति है, वो लोग उन लोगों को अपनी शक्तियों से ठीक कर रहे हैं, लेकिन किसी के जख्म बहुत ज्यादा हैं जिसके लिए उनकी शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया और फिर अपने साथ लेकर आए। इसी बीच वैभव ने उन लोगों से सवाल किया, क्या हुआ है यहां पर? क्या तुम में से किसी को भी पता है? वैभव ने सैनिकों से ये सवाल किया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ लटके हुए सर नजर आए, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। तभी एक तरफ से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई, और उसने वैभव की बात का जवाब देते हुए कहा, महल पर हमला हुआ है, और वो हमला किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान के अंश विक्रांत ने किया है, जिसका खौफ पूरे राज्य में फैला हुआ है। आज वो हमारा बुरा सपना बनकर हमारे सामने आ गया है। घायल सेनापति, जिसके हाथों से खून निकल रहा था क्योंकि उसके बाजू पर हमला हुआ था, उसने किसी तरह से उन लोगों की बात का जवाब दिया, और तभी आगे आते हुए शिवानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली जिसकी वजह से सेनापति के बाजू से खून निकलना बंद हो गया और फिर उसने अपनी आंखें खोली। सेनापति को रक्षक दल के बारे में पता है और वो उन लोगों को शक्तियों का इस्तेमाल करते नहीं देख सकते, लेकिन शक्तियों से अपने आप को ठीक होते महसूस कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही शिवानी ने उसके हाथ के जख्म को भर दिया, सेनापति को दर्द से राहत महसूस हुई और उसने शिवानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मदद के लिए आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन क्या आप लोग कोई मदद कर सकते हैं? उस विक्रांत ने राजा को भी कैद कर दिया है और वो राजकुमारी को लेने के लिए महल में गया है, क्या आप उसे रोक पाएंगे? सेनापति ने बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से उन सबकी तरफ देखते हुए उनसे सवाल किया, वो विक्रांत क्यों पड़ा है राजकुमारी के पीछे? और आज तक तो हमने सिर्फ उसका नाम ही सुना था, लगता है आज उससे सामना भी हो जाएगा। सक्षम ने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा, तो नीरज उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये कोई उत्साहित होने वाली नहीं, डरने वाली बात है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है। देखो, उस अकेले ने यहाँ पर कितनी तबाही मचाई है, हमें उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। नीरज की बात सुनकर लतिका ने कहा, हाँ, लेकिन चलो, हो सकता है कि वीरेश को भी हमारी मदद की जरूरत हो, जब वो इतना शक्तिशाली है तो वीरेश अकेले उसका सामना कैसे करेगा। इतना बोलते हुए वो सब वहां से आगे बढ़ गए और वो लोग वीरेश के साथ राजा को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी उन लोगों ने देखा कि राजा के चारों तरफ वो काले साए अभी भी मंडरा रहे हैं, जिससे कि वो लोग राजा तक पहुंच भी नहीं पाए। और अगर अभी राजा को आज़ाद करने के लिए वो लोग उन काले साए से लड़ने की कोशिश करते तो उनकी भी सारी शक्तियां उन पर ही खर्च हो जाती और फिर वो वीरेश की मदद नहीं कर पाते और ना ही विक्रांत से सामना। इसलिए फिलहाल के लिए उन लोगों ने किसी को भी ठीक करने या आज़ाद करने में अपनी शक्तियां खर्च नहीं की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से महल के अंदर बढ़ गए। एक दूसरे का हाथ पकड़ने से उन सारे लोगों की शक्तियां बढ़ती हैं और एक दूसरे में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो सभी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वो कुल मिलाकर 6 लोग हैं और उनके साथ सेनापति भी है, क्योंकि सेनापति ही उन्हें वहां का रास्ता दिखा रहा है। वो लोग आज पहली बार ही महल में आए हैं तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है। वो लोग जैसे ही अंदर आए, उन लोगों को वहां पर बहुत ही ज्यादा भयानक नकारात्मक शक्ति का एहसास हो गया और उन सब ने अब एक दूसरे की तरफ देखा।
क्या रक्षक दल के लोग पहुंच पाएंगे समय रहते वीरेश तक और बचा पाएंगे वसुंधरा को विक्रांत से, या फिर विक्रांत कामयाब हो जाएगा अपने शैतानी इरादों में? क्या होगा अब आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए।